श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो शिवम प्रभु, आपको याद है कहाँ तक हमने डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते पहले? किसी को याद है?
जड़ भरत के बारे में बताया गया था।
जड़ भरत का कंप्लीट हो चुका था ना?
यस यस
आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन चालू होने वाला है। ये सेक्शन श्रीमद् भागवत का बहुत डीप सेक्शन भी है, साथ साथ कई लोगों को ये सेक्शन डाइजेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ये सेक्शन मॉडर्न साइंस के बहुत अलग है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है, जम्बू द्वीप और भारतवर्ष, अलग अलग वर्ष कहाँ स्थित हैं, कैसे स्थित हैं, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है। मॉडर्न साइंटिस्ट का जो व्यू पॉइंट है और भागवत का जो व्यू पॉइंट है, दोनों अलग अलग हैं इसमें। इसलिए अगले 4-5 अध्याय जो हैं, हो सकता है 1-2 दिन, 2 दिन या 3 दिन लगेगा इसमें, तो इसको ध्यान से समझना होगा। और तो कई चीजें टेक्निकल भी हैं, उसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, अगर इसको सुनने के बाद आप पढ़ेंगे इन सेक्शन को तो आपको और आसानी से समझ में आ सकता है। तो ये सेक्शन स्टार्ट होता है जब कुछ क्लासेस पहले हमने देखा था कि महाराज प्रियव्रत ने धरती में, जब वो अपने रथ से धरती पे चल रहे थे, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए, उन गड्ढों से महासागर बने थे, सागरों का निर्माण हुआ था, 7 समुद्रों का निर्माण हुआ था, और वो 7 समुद्रों ने पूरे भूमंडल को 7 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये हमने देखा था जब हमने 5वां स्कंद चालू किया था, राजा प्रियव्रत की जो कहानी, राजा प्रियव्रत की कथा को हमने जब डिस्कस किया था, तब हमने ये देखा था कि राजा प्रियव्रत ने अपने रथ से, जब सूर्य, उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया था कि सूर्य जैसे, सूर्य सुमेरु पर्वत पे उनके रथ का एक धुरी होता है, दूसरा धुरी होता है मानसोत्तर पर्वत पे। तो सूरज जब घूमते हैं तो एक हिस्से में अंधेरा होता है, दूसरे हिस्से में उजाला होता है। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि आधे लोग अंधेरे में रहते हैं, तो उनका रथ सूर्य के जैसा चमकता था, तो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में उनका रथ चलता था, जहां पे अंधेरा होता था वहां पे उनके रथ से रोशनी निकलती थी। तो इस प्रकार से जब वो चल रहे थे, तो उनके रथ के जो पहिया था, उस पहिए से समुद्रों का निर्माण हुआ, 7 बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ, और उन समुद्रों ने पूरे भूमंडल को 7 भागों में डिवाइड कर दिया, 7 द्वीपों में डिवाइड कर दिया, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, अलग अलग द्वीपों में डिवाइड किया। और जब परीक्षित महाराज ने ये सुना, तो परीक्षित महाराज के मन में इच्छा हुई, आकांक्षा हुई जानने की कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, कैसे ये संसार बना है, कैसे अलग अलग लोक हैं और कहाँ कहाँ पे इन लोकों की स्थिति है। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा कि कृपया मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ये भौतिक संसार किस प्रकार से बना। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि भौतिक संसार के बारे में पूछने की क्या इच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक संसार के बारे में पूछना चाहिए, परीक्षित महाराज ने क्यों ऐसा पूछा। पर सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान की सृजन की लीला समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भगवान की वैकुंठ की लीला समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाया, तो ये संसार भी भगवान का क्रिएशन है। इस संसार को समझने से ये पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं, और जब भगवान की महानता को हम समझ जाते हैं, तभी हम भगवान की लीलाओं को भी ज्यादा एप्रिसिएट कर पाते हैं। अगर हम भगवान की महत्ता को नहीं समझ पाए, तो भगवान की लीलाओं को भी हम नहीं समझ पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामान्य समझते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं को सामान्य, पुरुष स्त्री की लीलाएं समझते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि उन्होंने भगवान की महानता को नहीं समझा है। अगर भगवान की महानता को उन्होंने समझा होता, तो राधा कृष्ण की लीलाओं को भी वो समझ जाते। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पूरा पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बताते हैं, जिसको जब हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कितना डीप स्टडी है इसका, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है अपने आप में। और जब उसको पढ़ते हैं, तब हम रियलाइज कर पाते हैं कि भगवान जो है वो केवल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत महान है। और जब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, तब भगवान की लीलाओं को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, भगवान की भौतिक शक्ति, भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, उसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी भी पूरे जन्म तक अगर उसका अंत ढूंढते रहेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। वास्तविकता में ब्रह्मा जी केवल एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, जबकि भगवान भगवान की एनर्जी को एक्सप्लेन करना ब्रह्मा जी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो बताना चालू करते हैं कि भूमंडल क्या कहलाता है, और भूमंडल का डिस्क्रिप्शन फिर भागवत में पूरे इस एक अध्याय में भूमंडल का डिस्क्रिप्शन आता है। तो हालांकि शब्दों में इसको बताना इतना आसान नहीं है, जब शब्दों में इसको बताते हैं तो बहुत कठिन है इसको बताना कि किस प्रकार से, बट एनी वे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई बोर्ड और पेन होना चाहिए, और बोर्ड और पेन में एक्सप्लेन करके हो सकता है। आइडियली इस तरीके के सेशंस के लिए ऑफलाइन क्लासेस सबसे अच्छी है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो भूमंडल जो है, भूमंडल मतलब अर्थ प्लेनेटरी सिस्टम। अर्थ प्लेनेटरी सिस्टम वास्तविकता में एक कमल के फूल के समान है, लोटस लोटस फ्लावर के समान है, और इसके जो सात आयरलैंड है भूमंडल के, वो सात आयरलैंड लोटस के जो सात पंखुड़ियां होती हैं उसके समान है, और उस पंखुड़ी के बीच में जो है, जो बीच का हिस्सा है, वो जम्बू द्वीप कहलाता है। तो भूमंडल को सात भागों में डिवाइड किया जाता है, और सातों भाग एक दूसरे से, सातों भाग की बाउंड्री जो है समुद्र है। जैसे जम्बू द्वीप के चारों तरफ नमक का समुद्र है, उसके आगे एक दूसरा द्वीप है, उसके आगे दूसरा एक समुद्र है। तो इस प्रकार से सात द्वीप हैं गोल गोल, और सात समुद्र हैं, इस प्रकार से जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन है। और जम्बू द्वीप का डायमीटर है 1 लाख योजन, 1 योजन में 8 मील होता है, मतलब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। तो 1 लाख योजन मतलब 12 लाख किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। अगर ये डिस्क्रिप्शन देखें तो ये हमें फेरी टेल जैसे लगते हैं एक्चुअली, कि पूरी धरती को अगर हम देखें तो कितना किलोमीटर होगा, मैक्सिमम हो सकता है 5,000, 10,000, 10,000 किलोमीटर, परंतु यहाँ पे लिखा है 12 लाख किलोमीटर जम्बू द्वीप का डायमीटर है। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष पाए जाते हैं, और हर वर्ष 9,000 योजन मतलब 72,000 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर के हैं। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि हम जो वास्तविकता में अभी धरती देख रहे हैं, अभी जो हम अर्थ प्लेनेट को देख रहे हैं, वो अर्थ प्लेनेट, जस्ट मिनट, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, हर वर्ष जो है 9,000 योजन में है। तो पूरा अभी जो हम धरती देखते हैं, हमारे सामने जो धरती अभी दिखाई देती है, वो धरती वास्तविकता में हम उसका बहुत कम हिस्सा देख पाते हैं। भागवत बताता है कि भारतवर्ष जो है वो ही अभी का पूरा सारा सारा संसार दिखाई देता है, क्योंकि भारतवर्ष के अलावा जो इलावृत वर्ष हैं और किम पुरुष वर्ष हैं, जो भी अलग अलग वर्ष आते हैं भारत के अलावा, उन वर्षों को भी अभी देखना मुश्किल है, क्योंकि वो वर्ष अलग डायमेंशन के होते हैं और उच्च जीव वहां पे निवास करते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं भारत खंड या भारत वर्ष को ही देख पाते हैं, जम्बू द्वीप को भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी डायमेंशन अलग है और अलग अलग तरीके के, जैसे देवता डेमी गॉड्स ये निवास करते हैं, तो उनको सामान्य आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रेजेंटली लोगों को ये मॉडल समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से अर्थ बहुत अलग दिखाई देता है, परंतु इसमें जो जम्बू द्वीप है वो बहुत अलग है, अर्थ से बहुत बड़ा है। अगर अर्थ का डिस्क्रिप्शन हम मानना चाहें तो भारतवर्ष जो है अर्थ के समान है। तो जम्बू द्वीप के बीच में इलावृत वर्ष आता है, और इलावृत वर्ष के बीच में सुमेरु पर्वत है। तो जम्बू द्वीप जो है वो ऐसा समतल के जैसा है, उसके बीच में सेंटर में इलावृत वर्ष है, और इलावृत वर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत, जो सोने से सोने का पर्वत है, माउंट सुमेरु। और सुमेरु पर्वत भूमंडल का सेंटर होता है। तो एक पर्वत सेंटर के जैसा है, उसके चारों तरफ इलावृत वर्ष है, फिर समुद्र है, फिर दूसरा द्वीप है, फिर इस तरह से सारे द्वीप बने हैं। तो भूमंडल का सेंटर जो है वो सुमेरु पर्वत है। अभी सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन बड़ा है, जिसमें से 16,000 योजन भूमंडल के नीचे है और इसका विड्थ भी 16,000 योजन है भूमंडल का। और जो जो भूमंडल में जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष में 9 वर्ष को डिवाइड करने के लिए 8 8 8 पहाड़ियां हैं और हर पहाड़ी 2,000 योजन चौड़ी है और हर पहाड़ी जो है वो नमक के समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई है। तो अगर देखा जाए तो पूरा संसार नमक के समुद्र से घिरा है। दैट मीन्स भागवत का ये जो डिस्क्रिप्शन है तो ये केवल 9 वर्षों का डिस्क्रिप्शन या भारतवर्ष का डिस्क्रिप्शन जो है वो केवल पूरे संसार का डिस्क्रिप्शन माना जा सकता है। इलावृत वर्ष सबसे बीच में है। इलावृत वर्ष के नॉर्थ में उत्तर दिशा में नील पर्वत है और नील पर्वत के आगे रम्यक वर्ष आता है। रम्यक वर्ष के उत्तर दिशा में श्वेत पर्वत है। श्वेत पर्वत के बाद हिरण्यमय वर्ष आता है। हिरण्यमय वर्ष के नॉर्थ में श्रृंगवान पर्वत है और जिसके बाद कुरु वर्ष आता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन जब भागवत पढ़ेंगे तो उसको देख सकते हैं। इस तरह से याद रखना मुश्किल भी है, हमारी कलयुग की मेमोरी है तो याद वैसे भी नहीं रहेगा, पर जब भागवत पढ़ेंगे तो आप इसको थोड़ा अलग तरीके से याद करने का प्रयास कर सकते हैं जितना हो सके। इलावृत वर्ष के दक्षिण में निषाद पर्वत आता है। निषाद पर्वत के बॉर्डर पे हरि वर्ष आता है। हरि वर्ष के दक्षिण में हेमकूट पर्वत आता है। वहां से किम पुरुष वर्ष आता है। किम पुरुष वर्ष के दक्षिण में हिमालय पर्वत आता है और हिमालय पर्वत के बाद भारत वर्ष आता है जिसको अभी हम देखते हैं। हिमालय पर्वत से जो घिरा हुआ है वो भारत वर्ष कहलाता है और इस वर्ष के आगे जाते हैं तो किम पुरुष वर्ष आता है जहाँ पे हनुमान जी निवास करते हैं। उसके आगे हरि वर्ष आता है जहाँ पे प्रहलाद निवास करते हैं। उसके आगे इलावृत आता है, हिरण्यमय आता है, रम्यक आता है। ये सारे वर्ष देख नहीं सकते, सामान्यतः योगी लोग वहां पे जा पाते हैं, सामान्य व्यक्ति उसको दिखाई भी नहीं देते हैं। अभी इलावृत वर्ष के पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत है जिससे कि भद्रस्रव वर्ष निकलता है। उसके आगे माल्यवान पर्वत है, फिर नील पर्वत है। हम कभी इसको डिस्कस करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे कि या तो कुछ पीपीटी में इस प्रकार से डिस्क्राइब करना होगा या फिर बोर्ड पे इसको बताना होगा, तब ये समझ में आएगा। अभी सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चार छोटे छोटे पर्वत हैं जिनका नाम है मंदार पर्वत, मेरु मंदार पर्वत, सुपार्श्व पर्वत और कुमुद पर्वत। इन सभी पर्वतों की लेंथ और हाइट 10,000 योजन है और इन सभी पर्वतों के ऊपर एक पेड़ है और वो पेड़ कितना बड़ा है, 1100 योजन, मतलब 9,000 किलोमीटर लंबा पेड़। धरती भी उतना लंबा नहीं है, उतना बड़ा पेड़ है, 1100 योजन। तो ये पहाड़ चारों दिशाओं में है और इन चारों दिशाओं में पहाड़ के आगे हाथी भी हैं और ऐसा बताते हैं ये चारों हाथी जो है ये भूमंडल को बैलेंस करते हैं। कभी कभी जब भूकंप आता है तो ये हाथी जब उछलते हैं तो पूरे धरती पे अलग अलग स्थानों पे भूकंप आता है, किस जगह पे वो उछलते हैं उसके आधार पे। तो ये हर पहाड़ पे हाथी भी हैं, उस पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है। मंदार पर्वत के ऊपर एक मैंगो ट्री है, उसका नाम है देवचूत और उस देवचूत बहुत बहुत बड़ा वृक्ष है। इसका जूस लगातार गिरता रहता है, उससे एक नदी बनती है, वो नदी आम के जूस की नदी होती है। हमने अभी तक उस नदी को देखा नहीं है, वो नदी भारतवर्ष में नहीं आती है, वो
हरे कृष्णा प्रभु जी, द वीडियो है स्टॉप।
नदी जो है इलावृत वर्ष के पूर्व दिशा से
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो जी आपका म्यूट है।
हाँ नहीं, मेरा सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया था, अभी अभी सुनाई दे रहा
जी।
है? पुरुषोत्तम राम प्रभु?
ब्रेक हो रहा है अभी तो। हाँ अभी तो सही है। हाँ अभी जी।
ओके, जो मैंने अभी तक सुनाया वो समझ में वो सुनाई दी है ना प्रभु? जो मैंगो जूस का
जी प्रभु
नदी
जी,
हमने
वो
जो
आम
डिस्कस
की
किया,
आम वो आम का पेड़ वो नदी है वहां तक तो समझ में आया प्रभु जी। हाँ वो अभी तक देखा नहीं हुआ।
उसको आप इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो देखना बहुत मुश्किल है, इमेजिन करने से ही समझ सकते हैं। इसके बाद एक पर्वत था मंदार पर्वत, उसके बाद में दूसरा जो पर्वत है वो पर्वत का नाम है मेरु मंदार। तो उस मेरु मंदार पर्वत के ऊपर जाम्बू ट्री है, जाम्बू वृक्ष है, और जिसका जो जूस है, जिसका फल है, जाम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन का जो फल है वो उसका, उसमें से इतने बड़े जामुन निकलते हैं कि वो हाथी के बराबर वो जामुन है, वो जामुन का साइज हाथी के बराबर है, और उससे जाम्बू नदी एक नदी बनती है, जाम्बू नदी नाम से उस नदी का नाम है, और वो नदी जो है इलाहाबाद वर्ष के दक्षिण दिशा में जाती है, और जाम्बू के जूस से जब नदी बहती है तो वो नदी जिस जिस किनारे पे टच करती है तो उस नदी के पानी का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वहां पे जिस किनारे पे नदी का पानी टच होता है उस किनारे पे सोना उगने लगता है, सोना निकल के आता है वहां से, और उस सोने का नाम है जम्बूनाथ। और यहाँ भी स्वर्ग के लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और उस सोने को यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा माउंटेन था, ये चारों माउंटेन एक्चुअली कहाँ पे आ रहे हैं? मंदार पर्वत के चारों तरफ हैं। तो तीसरा माउंटेन है, उसका नाम है सुपार्श्व। सुपार्श्व माउंटेन के ऊपर एक पेड़ है जिसका नाम है महाकदम्ब, और इस महाकदम्ब से एक और नदी निकलती है जो नदी है हनी, शहद की नदी निकलती है, और ये नदी का जो चौड़ाई है 40 फीट चौड़ी नदी निकलती है, और ये शहद की नदी इलाहाबाद वर्ष के पश्चिम दशा में जाती है, जहां से वो नदी निकलती जाती है वो इलाका पूरा समृद्ध होता जाता है। इसके बाद चौथा माउंटेन जो है कुमुद पर्वत, कुमुद पर्वत के ऊपर एक बड़ा बरगद का पेड़ है जिसका नाम सतवल्स, और इसके है सतवल्स। इन चारों पर्वतों के नीचे चार बड़ी बड़ी लेक्स भी होती हैं, झील होती हैं, और इन झीलों में कुछ कुछ झील जो है वो दूध की झील है, कुछ शहद की झील है, कुछ गन्ने के जूस की झील है, और कुछ पानी की झील है, और इसमें अलग इसके आसपास बहुत सारे गार्डन है, चित्ररथ गार्डन, अलग अलग गार्डन है जहाँ पे देवता लोग निवास करते हैं, देवता लोग आते हैं। इलाहाबाद वर्ष, अभी हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि इलाहाबाद वर्ष जो है ये कोई डेमी गॉड्स का प्लेनेट नहीं है, ये भूमंडल का ही है, परंतु लोग इतने पायस हैं कि वो देवलोक के लोगों के समान दिखाई देते हैं, कभी भी उनको थकान नहीं होती है, कभी भी उनको बुढ़ापा नहीं आता है, कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स हैं, हमने केवल चार माउंटेन का डिस्क्रिप्शन इसमें भागवत में दिया है। इसके बाद बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है, उत्तर दिशा में दो और पर्वत हैं जिनका नाम है जठर और देवकूट, और इसी तरह से पश्चिम दिशा में दो और पर्वत हैं जिनका नाम है पावन और परियात्रा, और दक्षिण दिशा में कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत अभी भी मैनिफेस्टेड है इस संसार में, बाकी सभी पर्वत अभी मैनिफेस्टेड नहीं है, और उत्तर दिशा में दो पर्वत हैं त्रिसंग और मकर। अभी जो हमने माउंट सुमेरु देखा था, सुमेरु पर्वत जो कि इलाहाबाद वर्ष के सेंटर पे था, जम्बूद्वीप के सेंटर पे, उस सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मा जी का लोक आता है, ब्रह्मा जी के लोक का नाम है, आपको पता है ब्रह्मा जी का लोक क्या है? ब्रह्मा जी के लोक का नाम नहीं, ब्रह्मलोक तो नाम उसका है,
सत्यलोक सत्यलोक
सत्यलोक भी उसका एक नाम है, परंतु उसका मेन नाम है सात कौम भी, क्योंकि वो पूरी तरह से सोने से बना हुआ है, कौम्ब मतलब सोना, वो सोने से बना हुआ है पूरा पूरा ब्रह्मा जी का लोक, इसलिए सात कौम भी बोलते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक के चारों दिशाओं में लोकपाल हैं, आठों दिशाओं बोल सकते हैं, आठ लोकपाल जो हैं वो आठ दिशाओं को नियंत्रित करते हैं, लोकपाल मतलब जो दिशाओं के रक्षक होते हैं। सारे लोग ब्रह्मा जी के ब्रह्मपुरी की तरफ होते हैं, केवल उनका साइज ब्रह्मपुरी से छोटा होता है, ब्रह्मपुरी से 1/4 साइज होता है इनका। जब आपको याद होगा जब भगवान ब्राह्मण वामन देव ने अपने पैरों को बढ़ाया था, ब्रह्मांड के लिमिट तक पहुंचाया था, तो उन्होंने कवरिंग्स को तोड़ दिया था अपने अंगूठे अंगूठे के घात से, वो गंगा देवी निकल के आई थी। और 1000 युग साइकिल में गंगा का जो जल है वो ध्रुव लोक तक आता है, और उसके बाद वही जो है ब्रह्मलोक में आता है, ब्रह्मलोक से फिर वो गंगा जल सुमेरु पर्वत से होता हुआ अलग अलग वर्षों में आता है, इलाहाबाद वर्ष में, भारत वर्ष में भी वो गंगा जल आता है। और ये गंगा सप्तऋषि के प्लैनेट्स को भी शुद्ध करती है, उसके बाद देवताओं के बहुत सारे लोगों, फाइनली गंगा है वो मून प्लैनेट पे जाती है, उसके बाद ब्रह्मा जी के एबोट पे जाती है सुमेरु पर्वत पे, और सुमेरु पर्वत से गंगा की चार ब्रांचेज निकलती है। सुमेरु पर्वत सबसे ऊपर है, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचती है गंगा, और वहां से उसकी चार भुजाएं, चार ब्रांचेज निकलती हैं। गंगा की चार ब्रांचेज का नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, और ये चार चार गंगा की जो हैं ये समुद्र में मिल जाती हैं जाके, क्योंकि सबसे पहला द्वीप जो है जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के बाहर जो समुद्र है उस समुद्र में ये गंगा मिल जाती है। अभी ब्रह्मा के लोक से गंगा सबसे पहले कहाँ आती है, ब्रह्मा के लोक से सीता जो गंगा की एक ब्रांच है, वो सीता ब्रांच केसराचल पर्वत में आती है, और वहां से केसराचल पर्वत से ये गंधमादन पर्वत में आके फिर भद्रस्व वर्ष में आती है, और भद्रस्व वर्ष को पार करते हुए वो ईस्ट में जाके समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह से गंगा की दूसरी ब्रांच जो है माल्यवान पर्वत से आती है और केतुमाल होते हुए चली जाती है। इसके बाद अलकनंदा जो है वो हेमकूट से निकलती है और भारतवर्ष में आती है। तो अभी जो हम गंगा देखते हैं वो गंगा की एक ब्रांच है जिसका नाम है अलकनंदा, जो कि भारतवर्ष से जाके दक्षिणी समुद्र में हिंद महासागर में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा गंगा के अलावा और भी नदियां हैं जो कि हेमकूट पर्वत से निकलती हैं, सुमेरु पर्वत से निकलती हैं, और बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। अभी इतने सारे वर्षों के डिस्क्रिप्शन में एक वर्ष का नाम आता था जिसका नाम था भारतवर्ष। भा शब्द का मतलब होता है कि लोगों का वेलफेयर, दूसरे लोगों की सेवा, और रत रत का मतलब जो दूसरे लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। तो भारतवर्ष का मतलब होता है वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे लोगों के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। तो भारतवर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्कंद में आता है। देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हम भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति के पास ये चांस होता है कि भगवत प्राप्ति कर सके। जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा भारतवर्ष के अलावा जो भी वर्ष के डिस्क्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट देवताओं के जैसे हैं। वो सभी एक्चुअली देवता नहीं है, परंतु वहां पे सौंदर्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑपुलेंसेस है। तो इन सभी में भारतवर्ष जो है वो कर्म करने का स्थान है, बाकी सभी स्थान भोगने के स्थान है। भारतवर्ष में व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के आधार पर वो अलग अलग लोकों में जाता है। इन 8 स्वर्गिक लोकों में, स्वर्ग वर्ष में मनुष्य 10,000 साल तक जीवित रहता है और देवताओं के समान निवास करता है भारतवर्ष के अलावा। तो बहुत सारे सालों तक ऐसा एंजॉयमेंट करने के बाद फिर व्यक्ति जब उनके जीवन का देवलोक में या अलग अलग वर्षों में जब बहुत साल तक इंद्रिय भोग करता है, और वहां पे ये चीज भी होता है कि बच्चे का पैदा होने का कुछ दर्द नहीं होता है। जब व्यक्ति का जीवन केवल 1 साल बचा रहता है तभी पत्नी का बच्चा होता है, तभी माँ बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा जन्म लेते साथ तुरंत बड़ा हो जाता है, 1 साल के अंदर वो लोग उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जो भारत के अलावा बाकी 8 वर्ष के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन में निवास करते हैं, ऑलमोस्ट देवताओं के जैसे सुख का भोग करते हैं। वो सभी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, परंतु भक्ति की अवस्था में होते हैं। उनको ये पता होता है कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी भोग की समस्याएं, बहुत सारी भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जैसे हम देखें कि अमेरिका में लोगों को भक्ति करना मुश्किल होता है, क्योंकि अमेरिका में सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा है। जब भी भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो व्यक्ति अध्यात्म में ढीला हो जाता है। इसी तरह से भारतवर्ष के अलावा जो बाकी लोग हैं, बाकी जो लोक हैं, वहां के लोगों के पास इतना ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं हैं कि वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सभी भक्तों को कृपा देने के लिए भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और इन 9 वर्षों में निवास करते हैं, जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में निवास करते हैं और भगवान के डीटी रूप, भगवान के विग्रह की वो सेवा करते हैं। इलावृत वर्ष में केवल भगवान शिव निवास करते हैं, केवल वो ही मेल है, बाकी सभी फीमेल है। इलावृत वर्ष में दुर्गा जी ने इस प्रकार से व्यवस्था बना के रखी है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे एंटर नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे एंटर हो जाता है तो तुरंत स्त्री बन जाता है। इलावृत वर्ष के अंदर वहां पे केवल भगवान शिव एक पुरुष है और बाकी दुर्गा और दुर्गा की सखियां हैं वो निवास करती हैं। भगवान शिव वहां पे मेडिटेट करते हैं संकर्षण के ऊपर, भगवान संकर्षण के ऊपर। भागवत में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि एक बार एक राजा गलती से वहां पे एंटर कर गए थे, तो राजा जो थे वो रानी में कन्वर्ट हो गए थे। फिर जब शिव जी को पता चला कि ये राजा तो बहुत बड़े राजा हैं, अभी औरत बन जाएंगे तो शासन कैसे करेंगे, तो उनको एक अनोखा वरदान मिला था। वो 1 महीने पुरुष होते थे, 1 महीने स्त्री रहते थे, तो 1 महीने राज्य करते थे, 1 महीने गायब हो जाते थे। और उसके पीछे एक और कहानी हुई थी, फिर जब वो 1 महीने स्त्री के रूप में थे तो उनको एक दूसरे राजा ने पसंद कर लिया और उससे विवाह करके उनका एक पुत्र हुआ। वो पुत्र बहुत महान राजा थे, उन भागवत में उनका नाम आता है, मुझे राजा का नाम याद नहीं आ रहा, परंतु उसी से उनका जन्म हुआ था। जब वो राजा स्त्री के रूप में थे तब एक राजा ने उनसे पुत्र की प्राप्ति की थी। तो वो इलावृत वर्ष में ही होता है। इलावृत वर्ष में कोई भी व्यक्ति एंटर करता है तो वो स्त्री में बदल जाता है। इसके बाद आता है भद्रास्व वर्ष। भद्रास्व वर्ष में धर्मराज के पुत्र निवास करते हैं, जहाँ पे भगवान हयशिर्ष की पूजा करते हैं वो। और इसके बाद आता है हरिवर्ष। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज निवास करते हैं, भगवान नृसिंह देव की पूजा करते हैं, वर्षिप करते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भी भागवत में दी जाती हैं कि हे भगवान, आप इतने शक्तिशाली हैं, आपके नाखून इतने कठोर हैं, कृपया करके मेरे मन में जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, राक्षस के समान मेरे मन में जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं उसको आप खत्म कर दीजिए, हमारे हृदय में प्रकट होइए और हृदय की अज्ञानता को दूर कर दीजिए, जिससे कि आपकी कृपा से हम इस भौतिक संसार में फियर को खत्म कर सकें, भौतिक संसार के दर्द को हम खत्म कर सकें। और प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी भी भौतिक संसार के जीवन, फैमिली लाइफ के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो, और अगर हमें अभी भी कुछ अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट केवल भक्तों के लिए हो और भगवान कृष्ण के लिए हो। इसके बाद आता है केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं और वहां पे कई प्रजापति निवास करते हैं। प्रजापति संवत्सर वहां पे निवास करते हैं, जिनके 18,000 पुत्र हैं, 18,000 पुत्रियां हैं। और ये 18,000 पुत्र देवताओं, ये 18,000 पुत्र पुत्रियां दिन और रात का रूप धारण करते हैं। ये सभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके बाद रम्यक वर्ष में वैवस्वत मनु निवास करते हैं, मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा अवतार लेते हैं, अर्यमा निवास करते हैं, कूर्म भगवान की पूजा करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में वराह देव की पूजा होती है भूमि देवी के द्वारा। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं। भारत वर्ष में नारद मुनि नर नारायण की पूजा करते हैं। नर नारायण जो कि बद्रीनाथ में उपस्थित हैं, बद्रिकाश्रम में उपस्थित हैं, उनकी पूजा नारद मुनि भारतवर्ष में करते हैं। और भारतवर्ष ही ऐसा स्थान है जहाँ पे 3 गुणों के आधार पे लोग निवास करते हैं। कुछ लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में है निवास करते हैं, कुछ सामान्य लोग होते हैं, कुछ बहुत पतित लोग होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष ही है जहाँ पे कर्म का नियम चलता है। कर्म का नियम बाकी वर्षों में एक्टिव नहीं है, केवल भारतवर्ष में कर्म का नियम चलता है। कई कई जन्मों के बाद जब किसी व्यक्ति के पुण्य कर्म बहुत उदय होते हैं तब उसको शुद्ध भक्त का संग मिलता है। और देवता लोग इस प्रकार से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि कितना कितना अचरज हो रहा है कि ये मनुष्य लोग जो हैं, जो भारतवर्ष में रहते हैं, इन्होंने बहुत पुण्य के कार्य किए होंगे तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं। देवता लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ये अमेजिंग चीज है, ऊपर से देवता भारत में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, भारत के लोग अमेरिका जाने के बारे में प्रार्थना करते हैं। बहुत अमेजिंग चीज है कि देवता लोग जो कि इतने सुख में हैं, ऐसा बताते हैं कि देव लोग की जो अप्सराएं हैं उनके सामने इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री भी छिपकली के समान लगती है। देवताओं में देव लोग में इतना ज्यादा ऐश्वर्य होता है। और वो देवता यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारा कोई पुण्य बचा हो तो हम भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं। और जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो सोचता है भारत में क्यों जन्म ले लिया, अमेरिका में जन्म लेना चाहिए था। कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। देवता इस प्रकार से बता रहे हैं कि भारतवर्ष में अगर छोटा सा भी जीवन मिल जाए तो वो जीवन ब्रह्मलोक में रहने से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतवर्ष में रह के व्यक्ति कृष्ण भक्ति को बहुत तेजी से प्राप्त कर सकता है, भगवान को सरेंडर कर सकता है, वैकुंठ जा सकता है। इसलिए ब्रह्मलोक को छोड़ के भी लोग भारत में जन्म लेना चाहते हैं। भारतवर्ष व्यक्ति को एक प्रॉपर स्थान प्रदान करता है और प्रॉपर सिचुएशन प्रदान करता है जिससे कि शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की जा सके। इसलिए अगर किसी को भारतवर्ष में अगर मनुष्य शरीर मिला हुआ है और वो भक्ति को स्वीकार नहीं करता है तो वो व्यक्ति एक जंगली जानवर के समान है, उसको मनुष्य नहीं बोला जा सकता है। दैट मीन्स भारत में जितने लोग भक्त हैं, भक्त नहीं है, वो द्विपाद पशु हैं, पशु हैं जो कि दो दो पैर से चल रहे हैं, मनुष्य के समान नहीं है। वैसे भी मनुष्य उनको बोला जाता है जो मनु संहिता को पालन करते हैं। तो जो आजकल हम देखते हैं मनु संहिता को कोई पालन नहीं करता है, मनु संहिता को पालन करने वाले मनुष्य कहलाते हैं। और मनु संहिता को तो ऑलरेडी हमने रिजेक्ट कर दिया है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम पालन करते हैं, इसलिए ऑलरेडी हम मनुष्य नहीं है, द्विपाद पशु हैं। क्योंकि मनु जो है वो मनुष्य के पिता है और उन्होंने नियम बनाए हैं। तो महाराज सगर के पुत्र जो थे जब वो इस धरती को खोद रहे थे, उन्होंने 8 छोटे छोटे आइलैंड बनाए जम्बू द्वीप के चारों तरफ। उनका नाम था स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, अवतरण, रमणक, ये अलग अलग आयरलैंड है जो कि जम्बू द्वीप के आसपास है। जिस प्रकार से जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत के चारों तरफ है और जम्बू द्वीप के चारों तरफ समुद्र खारे पानी का समुद्र है, और ये समुद्र 1,00,000 योजन का है, 1,00,000 योजन मतलब 8,00,000 मील बड़ा समुद्र है, सॉल्ट वाटर ओशन। और सॉल्ट वाटर ओशन के आगे जो है प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप जो है जम्बू द्वीप से दुगुना ज्यादा बड़ा है, मतलब 2,00,000 योजन का है। अभी जो 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 हमने जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन देखा, प्लक्ष द्वीप का भी वैसे ही डिस्क्रिप्शन है, इसलिए प्लक्ष द्वीप को आगे डिस्क्राइब नहीं किया भागवत में, बहुत डिटेल में नहीं किया है, क्योंकि ऐसे अगर डिस्क्राइब करेंगे तो पेज के पेज खत्म होते जाएंगे। प्लक्ष द्वीप में एक प्लक्ष वृक्ष है और ये वृक्ष जम्बू ट्री के समान है। प्रियव्रत राजा के एक पुत्र हैं जिन्होंने प्लक्ष द्वीप को 7 भागों में डिवाइड किया था, और प्लक्ष द्वीप के निवासी 1,000 साल तक जीवित रहते हैं और देवताओं के समान पुत्र पैदा करते हैं। प्लक्ष द्वीप में भी वर्णाश्रम सिस्टम पालन होता है, सूर्यदेव की पूजा की जाती है, अल्टीमेटली वहां के लोग सूर्य लोक में जाते हैं। प्लक्ष द्वीप के चारों तरफ गन्ने का समुद्र है, सॉल्ट वाटर समुद्र नहीं, गन्ने का समुद्र है अभी, और वो समुद्र 2,00,000 योजन चौड़ाई में है। जितना चाहे गन्ने का रस पी सकते हैं, 20-30 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गन्ने के जूस का समुद्र है। और उस गन्ने के जूस के समुद्र के आगे फिर सालमली द्वीप है, सालमली द्वीप प्लक्ष द्वीप से भी दुगना बड़ा है, मतलब 4,00,000 योजन बड़ा है। सालमली द्वीप में एक सालमली वृक्ष है, जैसे प्लक्ष वृक्ष था उसी तरह से सालमली वृक्ष है। इस द्वीप को भी 7 भागों में डिवाइड किया गया और प्रियव्रत के पुत्र वहां पे निवास राजा थे वहां पे। अभी सालमली द्वीप के चारों तरफ एक समुद्र है जो कि शराब है, लिकर का समुद्र है, और वो भी 4,00,000 योजन बड़ा है। इस लिकर के समुद्र के आगे कुश द्वीप है जो कि 8,00,000 योजन बड़ा है। कुश द्वीप में कुश वृक्ष है, कुशा घास भी है, कुश घास वास्तविकता में वामन देव नहीं, जब वराह देव आए थे तो उनके शरीर के जो बाल निकले थे वो कुशा घास में बदल गए थे, तो कुशा घास वहां पे पाई जाती है। ये भी प्रिय व्रत के एक पुत्र ने इसको राज्य किया था और 7 भागों में डिवाइड करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया था। यहाँ भी वर्णाश्रम नहीं है, परंतु इस प्रकार से कुछ व्यवस्था है लोगों के रहने की। अभी कुश द्वीप के चारों तरफ घी का समुद्र है, बहुत महंगी चीज है घी, यहाँ पे नहीं मिलता है, घी का समुद्र है, और कितना बड़ा है, 8,00,000 योजन चौड़ा समुद्र है। 8,00,000 योजन, 1 योजन में 8 मील होता है, मतलब 72,00,000 मील, और 1 मील में 1.3 किलोमीटर होता है, मतलब करीब 1 करोड़ किलोमीटर का, 1 करोड़ किलोमीटर चौड़ा घी का समुद्र है। ये हमारे माइंड से बाहर की बात है, एक्चुअली उतना सोचना भी मुश्किल है। इस समुद्र के चारों तरफ क्रौंचु द्वीप जो कि 16,000 योजन बड़ा है। यहाँ पे प्रियव्रत का एक पुत्र घृतप्रस्थ ने राज्य किया था। क्रौंच द्वीप के चारों तरफ शिव सागर है, मिल्क का समुद्र है, दूध का समुद्र है। और इसके आगे साक द्वीप है, साक द्वीप के आगे दही का समुद्र है, योगर्ट का समुद्र है। और उसके आगे पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप 64,00,000 योजन बड़ा है। पुष्कर का मतलब होता है पुष्कर को तालाब को पोखर या पुष्कर बोला जाता है। इस पुष्कर में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है जिसके 100 मिलियन जिसमें गोल्डन पेटल्स हैं। और ये कमल का फूल जो है ये ब्रह्मा जी का रहने का स्थान है, ब्रह्मा जी ने इसी कमल के ऊपर जन्म लिया था। दैट मीन्स ये कमल विष्णु जी के गर्भ से निकल के आया है, विष्णु जी की नाभि से निकल के आया है, ये कि पुष्कर द्वीप में ये कमल है। और इस आयरलैंड के बीच में मानसोत्तर पर्वत है, और ये मानसोत्तर पर्वत जो है ये पुष्कर द्वीप की बाउंड्री को डिसाइड करता है। अभी जो हमने सूर्य का देखा था, सूर्य का जो रथ चलता है, सूर्य के रथ की एक एक धुरी जो है, सूर्य का रथ एक्चुअली एक ही पहिए का है क्योंकि उसकी एक धुरी फिक्स है, वो धुरी है सुमेरु पर्वत के ऊपर फिक्स है, और दूसरी तरफ से एक पहिया चलता रहता है। तो वो जो दूसरा पहिया है वो इसी मानसोत्तर पर्वत पे चलता है। दैट मीन सारे द्वीपों के ऊपर सूर्य के जो पहिया है उस पहिए का स्पोक होता है, और पहिया जो है इस पहाड़ के ऊपर चलता है। सूर्य इस प्रकार से गोल गोल घूमते हैं इस पहाड़ के चारों तरफ और सभी द्वीपों को रोशनी प्रदान करते हैं। तो जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि सूर्य स्थिर है और ग्रह घूमते हैं, भागवत का कॉन्सेप्ट है कि सूर्य घूमता है ग्रह स्थिर रहते हैं। बहुत अपोजिट कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। सूर्य का ऑर्बिट बोला जाता है संवत्सर। संवत्सर दो भागों में डिवाइड होता है, उत्तरायण और दक्षिणायण। और उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन, दक्षिणायण मतलब देवताओं की रात। और इसके बाद पुष्कर द्वीप के लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप के चारों तरफ स्वीट वाटर, शक्कर वाले पानी का समुद्र है जो कि 64,00,000 योजन बड़ा है। इस स्वीट वाटर ओशन के आगे एक ऐसा खाली जमीन है जो कि गोल्ड से बना हुआ है। और इसके आगे लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत जो है वो बाउंड्री है। लोकालोक पर्वत के आगे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। सूर्य का लोकालोक पर्वत इतना ऊपर है कि सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर तक नहीं जाता है। तो लोकालोक पर्वत सामान्यतः ब्रह्मांड की बाउंड्री को डिनोट करता है। और लोकालोक पर्वत के आगे भी हालांकि स्थान है, और माउंट सुमेरु से लोकालोक पर्वत जो है वो यूनिवर्स का 1/4 डायमीटर कहलाता है, मतलब 125 मिलियन योजन जो है वो डिस्टेंस है सुमेरु पर्वत से लेकर लोकालोक पर्वत तक। अभी लोकालोक पर्वत के ऊपर ये 4 गजपति हैं, बड़े बड़े हाथी हैं जिनका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, ऋषभ, पुष्कर, चूर, वामन और अपराजित, जो कि 4 दिशाओं में ब्रह्मा जी ने रखे हैं जिससे कि बैलेंस बनता रहे और जिनके इम्बैलेंस होने से भूकंप आता है। भगवान भी इस लोक के ऊपर निवास करते हैं गजपति की को शक्ति प्रदान करने के लिए। और सूर्य इस ब्रह्मांड के मिडिल में स्थित है। सूर्य का डिस्टेंस धरती से 1,00,000 योजन दूर है। और भूलोक और स्वर्गलोक के बीच का जो अंतरिक्ष है उस एरिया में सूर्य निवास करता है। और सूर्य मानसोत्तर पर्वत के चारों तरफ 9,51,00,000 योजन डिस्टेंस चलता है। ओके, मुझे लगता है इतना सफिशियंट है, बहुत सारा डाटा हो गया। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस
प्रभु, मतलब आपने भी जो बोला कि ये आम के रस का समुद्र है और गन्ने का रस, तो वो अर्थ है कि अर्थ के बाहर है?
अर्थ के बाहर है। ये प्रश्न है कि आम का रस, गन्ने का रस, इसका समुद्र कहाँ है? एक्चुअली अर्थ पे होता तो अभी तक मनुष्य लोग खा चुके होते।
हाँ, मतलब
अर्थ पे नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देता है। योग जो करते हैं उनको दिखाई देता है क्योंकि भारतवर्ष के बाहर है ये सब।
भारतवर्ष का मतलब क्या इंडिया हुआ की?
नहीं, भारतवर्ष मतलब अभी के सेंस में देखें तो पूरा संसार।
संसार मतलब
पूरा वर्ल्ड,
अर्थ।
हाँ,
अर्थ
ना, अभी मॉडर्न मतलब सेंस में देखें तो पूरे अर्थ को भारतवर्ष बोला जा सकता है।
ओके, प्रभु मेरे को एक दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मतलब मैं ये सब थोड़ा बहुत एक्सेप्ट तो कर सकता हूँ, बट फिर प्रॉब्लम ये आता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थ पे हैं, ठीक है, तो बाहर के जैसे एक कॉमन थियोरी ये बोलते साइंटिस्ट लोग कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ होता बाहर तो वो लोग हमसे इंटरेक्ट करने का ट्राई क्यों नहीं किया अभी तक।
ये तो मेंटल स्पेकुलेशन है, वो ट्राई नहीं किए, हमने ट्राई किया हम भी तो नहीं पहुंच पाए। और एलियंस तो सभी लोग जानते हैं, एलियंस को बहुत बार देखा गया है। एलियंस थ्योरी आपने पढ़ी है ना, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, वो तो सभी साइंटिस्ट ने भी देखा है, उनसे कॉन्टेक्ट करने का भी प्रयास किया गया है। तो ऑब्वियसली जीवन तो है हर जगह, उनका शरीर उसी लोक के आधार पर होता है जिस लोक में वो निवास करते हैं, उस लोक के आधार पर उनका शरीर होता है, परंतु जीवन तो हर जगह है।
नहीं वो मान सकता हूँ मैं, पर अभी तक फिर कम्युनिकेशन की नहीं हो पाया जैसे अर्थ से।
कम्युनिकेशन अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो क्यों करेंगे? देवता लोग जब धरती पे आते तो धरती को टच भी नहीं करते हैं, भागवत में आता है।
अच्छा।
उनको लगता है जैसे हम कहीं जाते ना, कोई बहुत धनी व्यक्ति कोई पुअर व्यक्ति के यहाँ चला जाए तो घर के बाहर से ही खड़ा रहता है, एसोसिएट नहीं करता वो। तो देवता लोग जब धरती पे आते हैं जमीन के ऊपर रहते हैं, हवा में रहते हैं, जमीन को टच करना नहीं चाहते। तो उच्च लोग के लोग क्यों हमसे एसोसिएट करेंगे, उनको क्या जरूरत है? ओके और कोई प्रश्न किसी को पूछना है?
हरे कृष्णा रोजी धन्यवाद प्रणाम रोजी। एक्चुअली ये टॉपिक तो बहुत टफ था, बट आपकी मधुर वाणी से आपने इतने अच्छे से समझाया कि बहुत आनंद आया इसको सुनने में। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा
समझना अभी भी बहुत कठिन है उसको
जी, पर प्रभु जी आपने जो बताया ना तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, समझ में भी आ रहा था, क्लियर हो रहा था रोज।
ठीक है ट्राई करेंगे कल फिर से इसके आगे जो है, क्योंकि अभी बचा हुआ है, अभी तो हमने ये नहीं, अभी हमने केवल जम्बू द्वीप को देखा है मेनली, इसके आगे अभी वो आएगा कि अलग अलग लोग कितनी दूरी पे स्थित हैं, ब्रह्म लोक सत्य लोक ये सारे बाकी जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, वो डिस्क्रिप्शन आएगा अभी। ओके
ठीक है थैंक यू।
तो कल 7:30 पे ही क्लास करेंगे, अगर 8 बजे होगा तो मैं कल बता दूंगा, बट इन जनरल 7:30 टाइम है। आज तो मेरा दूसरा प्रोग्राम था तो वो खत्म होते होते थोड़ा लेट हो गया इसलिए। ओके जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मिताई गौर प्रेमानंदे।